तो आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए जो पहला श्लोक हमने खाली रिसाइट किया था लेकिन डिस्कस नहीं किया था, सो टुडे वी विल डिस्कस फ्रॉम भगवद गीता यथारूप फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट श्लोक का, ठीक है। तो मैंने कहा था कुछ लोगों को ये श्लोक याद करने के लिए, अच्छा वेरी नाइस वंडरफुल, सो जिसने याद किया है वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू, यू कैन प्लीज स्पीक। यस बोलो बोलो, आपका नाम बताओ पहले। सानवी, आज आपका बर्थडे है, तो विश यू मैनी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस ईयर्स एंड हैप्पी बर्थडे। नाउ यू कैन रिसाइट। वेरी नाइस वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। आपका नाम?
बेटा पूरा नाम बताओ बेटा।
वेरी नाइस, बोलिए। वेरी नाइस वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। और किसी बच्चे ने याद किया है? एनीबडी? नो प्रॉब्लम, आप नेक्स्ट टाइम याद कर सकते हैं, वेन एवर यू कैन। ओके, एंड फ्रॉम लेडीज एंड जेंटलमैन हु वुड लाइक टू रिसाइट, किसको याद हुआ है? बड़ों को बिना देखे पहले अगर
हाँ वो तो बड़ा बात हो जाता है।
हाँ बोलिए 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 बोलिए।
बताओ पूरा नाम बताओ पापा।
सुधांशु शर्मा
बोलिए।
धृतराष्ट्र वाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा ममका पांडवस्य किं कुर्वत् संजय।
वेरी नाइस वंडरफुल। एनीबडी एल्स? ठीक है, तो मैं एक दो बार रिसाइट करता हूँ, फिर आप उसके पीछे पीछे आपको आएगा, आप रिसाइट करना। उसके पहले किसी को इसका मतलब पता है?
हाँ प्रांजल बताइए
बिना। हाँ यस टेल मी। वेरी नाइस ओके यस।
He got a divine eyes.
Yes. He can see. He can see even in closing the eyes. He could see the war and he could narrate. है ना? Very nice. Okay. So आप पीछे पीछे दर रहे, तो पहला अध्याय है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। ये इसका इस तरह से टॉपिक लिखा है और इसका संस्कृत में टॉपिक है अर्जुन विषाद योग। इसका संस्कृत टेक्निकल जो नाम है इस चैप्टर का, उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। तो इस पे भी मुझे जरा याद दिलाना, आई वुड लाइक टू टेल दैट व्हाई दिस नेम इज लाइक दिस। सो या तो पहले मैं बता देता हूँ, क्योंकि कई बार मैं डिस्कशन में फिर इधर उधर चले जाता हूँ। तो जनरली विषाद, अगर आप हिंदी समझते हैं तो विषाद का क्या मतलब होता है? तो विषाद योग है कि रोग है? विषाद इज अ रोग। ओके, इट्स नॉट ए योग, विषाद इज अ रोग। ओके, सो व्हाई दिस अर्जुन्स विषाद इज टोल्ड एज योग? क्योंकि किसी का भी समझो विषाद है, किसी को दुख होता है जीवन में, या स्ट्रेस दुख ये सब एक तरह से बीमारी है, रोग है, लेकिन अर्जुन जो है वो भगवान का शुद्ध भक्त है। तो अर्जुन एक्चुअली हमारे लिए पूछ रहा है ये सब, तो वो जो अपना दुख प्रकट कर रहा है वो अपने लिए नहीं है, वो हमारे लिए है। जैसे कई बार क्या होता है कि टीचर जब स्टूडेंट को पढ़ाती है तो वो ABCD बोलती है पहले और फिर स्टूडेंट उसको रिपीट करता है, तो ऐसा नहीं कि टीचर को ABCD नहीं आती है, है ना? या मैथ्स में जब 1, 2, 3, 4 जब सिखाती है टीचर, तो ऐसा नहीं कोई स्टूडेंट से जगह इसको भी नहीं आता है क्या ये 1, 2 पढ़ा रही है ना, लेकिन उसको ट्रिग्नोमेट्री तक आता है, सब कुछ आता है, लेकिन वो रोल लेके कर रही है। वैसे ही अर्जुन जो है, अर्जुन जैसे हमने लास्ट टाइम अर्जुन का थोड़ा मैंने आपको बताया था उसका क्वालिफिकेशन, कि अर्जुन का क्वालिफिकेशन क्या था, उसकी योग्यता क्या थी, उसने क्या क्या अचीवमेंट किया था, अपने जमाने का सबसे बड़ा धनुर्धर था, अकेले उसने पूरी सेना को हराया था विराट देश के अंदर, बहुत उसकी योग्यता थी कि अर्जुन कुड इवन से नो टू उर्वशी, मतलब इट वॉज। तो इतने सारी चीजें, महादेव के साथ उसने युद्ध किया था, ये सारी चीज हमने डिस्कस की थी। तो अर्जुन का जो योग्यता है, जो क्वालिफिकेशन है, तो वो अभी रोग में नहीं पड़ सकता, लेकिन वो हमारे लिए तो ये भगवद गीता का रेलेवेंस भी हमको जब भी एक कोई कोई श्लोक पढ़े तो ऐसा समझना चाहिए कि ये श्लोक मेरे लिए है कि नहीं है, कैसे एप्लीकेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे धृतराष्ट्र उवाच है, सो आई विल टेल यू दैट हाउ दिस श्लोक इज एक्चुअली रेलेवेंस फॉर मी, क्या आप कह सकते हो। तो अर्जुन का ये जो विषाद है, ये जो दुख प्रकट कर रहा है वो, और कृष्ण को कहता है कि मैं फाइट नहीं करूंगा, और उसके बहुत सारे रीजन बताता है वो, जो भी हम देखेंगे। कम से कम 20 25 30 श्लोक के अंदर अर्जुन रीजंस बता रहा है कृष्ण को कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूं, और युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, और युद्ध करने से क्या होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, ये सब वो अभी हम देखेंगे। तो उसमें से बताए ना, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अर्जुन कृष्ण के सामने अपना गांडीव छोड़ देता है और कहता है कि नहीं, मैं नहीं करूंगा युद्ध। अब सोचो अर्जुन जो है वो एक योद्धा है, और योद्धा का काम युद्ध करना है। जैसे समझो कोई स्टूडेंट है, वो पूरे साल भर अपनी पढ़ाई करता है और फाइनल एग्जाम देने की बारी आती है उसकी, और उस एग्जाम के टाइम पे वो अपनी पेन छोड़ देता है, बोलता है अभी तो मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मेरा तो हाथ हिल रहा है, मुंह सूखा जा रहा है, त्वचा जल रही है, यू नो मैं एग्जाम नहीं लिखूंगा। समझो कोई स्टूडेंट ऐसा टीचर को कहे या अपने पेरेंट्स को कहे तो उन पे क्या बीतेगी, कह रहे पूरा साल भर तेरे को इस दिन ये दिन दिखाने के लिए तेरे को पढ़ाया मैंने, कि तू अभी मेरे को ये बोल रहा है कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं एग्जाम नहीं दे सकता। नहीं, एग्जाम तो देनी थी। तो अर्जुन को युद्ध करना उसके लिए बहुत अनिवार्य था, और उस युद्ध करने के टाइम पे जब स्टूडेंट एग्जाम लिखने जा रहा है, जैसे समझो आपका कोई स्टूडेंट MBA कर रहा है, CA कर रहा है, डॉक्टरी कर रहा है, और एग्जाम देने के लिए जाता है, आप एग्जाम जाने के पहले स्टूडेंट को पकड़ते हो, बोलते बेटा बैठ इधर, मैं तेरे को रामायण का पूरा पाठ करके बताती हूँ, 3 घंटा लगेगा, बैठ। बोलेगा क्या हो क्या रहा है, एग्जाम देने जा रहा हूँ मम्मा, मेरे को तुम क्या सुना रहे हो ये। लेकिन अर्जुन का उस टाइम पे, या समझो जैसे कि आपका एग्जाम्पल देता हूँ कि एक ट्रेडर है कि जो मार्केट में ट्रेडिंग करता है, तो जब मार्केट खुलता है, मार्केट का लिमिटेड पीरियड होता है, उस मार्केट में जब सारे ट्रांजेक्शन्स चल रहे हैं, उस ट्रांजेक्शन्स के बीच में आप उसको बोले एक मिनट जरा रुक, ट्रांजेक्शन्स करने के पहले मैं तेरे को गीता सुनाता हूँ, कौन सुनेगा। तो ऐसे ही कुछ अर्जुन के सामने सिचुएशन थी, लेकिन अर्जुन पूरा हार गया था। उसका इतना सारा एजुकेशन होने के बावजूद, अर्जुन का क्या एजुकेशन था, द बेस्ट एजुकेशन ही गॉट फ्रॉम हिज फैमिली विच वॉज फ्रॉम भस्म पितामह हु हिमसेल्फ वॉज ए स्टूडेंट ऑफ बृहस्पति, बृहस्पति अन्य देवता और भगवान परशुराम उनका शिष्य थे, वो उनके गुरु थे अर्जुन के, वो उसको सिखा रहे हैं। और यहाँ पर द्रोणाचार्य जो कि सबसे बेस्ट स्कूल उस टाइम था, आप उसको हार्वर्ड से उसका कंपैरिजन कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा आगे। तो उसका इतना सब एजुकेशन लेने के बाद भी अर्जुन कुडंट डू एनीथिंग, एक्चुअली ही बिकेम फ्रस्ट्रेटेड, एंड कृष्णा देन एंटर्ड इन द सीन एज ए मोटिवेशनल स्पीकर टू टेल अर्जुन व्हाई ही शुड फाइट। तो अर्जुन बहुत सारे तर्क देते हैं। तो ये जो विषाद वो प्रकट कर रहा है वो उसके लिए खुद के लिए नहीं है, वो तो जानता था सारी चीजें कृष्ण, इसलिए भगवान कहते हैं कि तू तो मेरा सखा है, मेरा मित्र है, इसलिए तेरे को मैं भगवद गीता सिखा रहा हूं। तो अर्जुन का ये जो विषाद है ये रोग नहीं है, योग है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है अर्जुन विषाद योग। अभी समझ में आया? तो कोई भी मतलब ऐसा है कि बहुत सारे लोग, कई बार हम लोग गीता ऐसे पोपट की तरह पढ़ भी देते हैं, लेकिन कई बार हमको पता नहीं रहता उसके पीछे का भाव, तो हम वो भी कोशिश करते हैं डिस्कस करने के लिए। तो आप दोहराइए मेरे पीछे, धृतराष्ट्र उवाच,
धृतराष्ट्र उवाच,
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे,
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे,
समवेतायुयुत्सवः,
समवेतायुयुत्सवः,
नामकः पाण्डवाश्चैव,
नामकः पाण्डवाश्चैव,
किम कुर्वत संजय,
किम कुर्वत संजय।
ठीक है, अभी आप में से कोई दोहराना चाहेगा देख के तो भी दोहरा सकते हैं, हम लोग दो जन और पढ़ सकते हैं, आप कोई You want to
speak?
एक और जन को पढ़ सकता है। यस,
धृतराष्ट्रवाच
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
समवेतायुयुत्सव
मामका पांडवश्च
किं कुर्वत् संजय।
तो आप ये वर्ड बाय वर्ड मीनिंग है मेरे पीछे दोहराइए।
धृतराष्ट्र उवाच
राजा धृतराष्ट्र ने कहा
धर्म क्षेत्रे
धर्म भूमि
तीर्थ स्थल में
कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान में
समवेता
एकत्र युत्सव
युद्ध की इच्छा करने से
मामका
मेरे पक्ष पुत्रों
पांडवा
पांडव के पुत्रों ने
तथा एव निश्चय ही
किया संजय
हे संजय। तो अनुवाद और तात्पर्य शिला एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा आप ट्रांसलेशन अनुवाद जो है मेरे पीछे दोहराइए। धृतराष्ट्र ने कहा
हे संजय
धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में
युद्ध की इच्छा से
एकत्र हुए
मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने
क्या किया। ठीक है, हम तात्पर्य पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आप प्रभु हिंदी में इसको जोर से पढ़ सकते हैं?
हाँ प्रभु।
तात्पर्य पढ़िए।
तात्पर्य, भागवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महत्व में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भागवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भागवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भागवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भागवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण ये पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई जो वैदिक युग में पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था, अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नीति भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर ना जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडव के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा क्योंकि स्वभाव से भी सभी पूर्ण आत्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उसकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था, इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जान पूछकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडव के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडव के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवंछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवंछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है।
तो प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा तात्पर्य लिखा है, तो इस तात्पर्य के आधार पर हम इस श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो जैसे हमने बैकग्राउंड दिया था कि आप जानते हैं कि महाभारत जो महाराज भरत थे उनसे इसकी शुरुआत होती है और बाद में उनकी लाइनेज में नीचे महाराज का नाम क्या था, विष्णु के पिताजी का नाम क्या था,
शांतनु,
महाराज शांतनु, उनका और गंगा का विवाह होता है। और उसके बाद आपको मैंने वो बैकग्राउंड बताया था कि किस तरह से वो आठ पुत्रों में से सात को नदी में बहा देती है और ये देवव्रत जो भीष्म आगे जाके बनते हैं वो रह जाते हैं। और बाद में ऑब्वियसली उनका दूसरा विवाह होता है सत्यवती के साथ में, उनसे दो पुत्रों की प्राप्ति होती है। फिर उसमें समहाव और अदर एक पुत्र की मृत्यु हो जाती है और दूसरा पुत्र भी पुत्र उत्पत्ति के लायक नहीं रहता है। तो व्यास देव जी के थ्रू अम्बा तो पहले ही चली जाती है, अंबिका और अम्बालिका से दो पुत्रों की प्राप्ति होती है उनको, और उसके बाद दासी से विदुर की प्राप्ति होती है। तो धृतराष्ट्र जो कि पैदा होता है लेकिन अंधा पैदा होता है, तो उस जमाने में राजा जन्म के आधार पर भी बनते थे, जो वरिष्ठ पुत्र होता था लेकिन वो राजा बनते बनते रह जाता है और पांडु को राजा बनाया जाता है। लेकिन पांडु जब जंगल में होता है तो एक ऋषि का उसको श्राप लगता है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो समहा और अदर कुंती और माद्री जो उसकी दो पत्नियां रहती है उनको देवताओं से पुत्रों की प्राप्ति होती है और उसमें कुंती को युधिष्ठिर पहले पैदा हो जाता है गांधारी से। तो गांधारी जी भी अपने दुर्योधन और बाकी के जो सब पुत्रों की प्राप्ति होती है। तो हमेशा इनके बीच में ये परिवार के अंदर कलह होता है। आपको ये सब बैकग्राउंड पता है कि धृतराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र के पुत्रों में और पांडु के पुत्रों में हमेशा से खिंचातानी लगी रहती है और धृतराष्ट्र कभी नहीं चाहता था कि पांडु के पुत्रों को उनका राज्य मिले या उनका दर्जा मिले। तो ये हमेशा फाइट चल रही थी। और उसके बाद शकुनी जो कि एक तरह से दिखता है कि धृतराष्ट्र का हितैषी था लेकिन वो एक्चुअली उसका हितैषी नहीं था, उसको बर्बाद करना चाहता था और उसका माइंड हमेशा पॉल्यूट कर करके और पांडवों के प्रति अपराध करते रहता था और पांडवों का जो वांछित राज्य था उसको हड़पने की कोशिश उसने कई बार की। और कई बार ऐसा था कि पांडवों को पहले एक तो विष देके मारने के प्रयास किया गया, उनको लाक्षाग्रह में जलाने का प्रयास किया गया, उसके बाद में उनको देश निकाला दे दिया ना, जंगल में भेज दिया। और उसके बाद फिर वापस जब वो आए तो उनके साथ जुआ खेला, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, फिर वापस वो जंगल में गए और उसके बाद में वो कंडीशन के हिसाब से उनको वापस आके अपना राज्य प्राप्त करना था लेकिन दुर्योधन ने दिया नहीं। तो दुर्योधन शकुनी कर्ण और दुशासन की बातें सुन सुनकर और बिल्कुल एक राक्षस की तरह बिहेव करता था। और फिर उसके बाद में जब वो आके अपना राज्य मांगने लगे तो उन्होंने दिया नहीं, तो तब युद्ध होना निश्चित हो गया क्योंकि क्षत्रिय जो होता है वो भीख मांग के अपना गुजारा नहीं कर सकता, उसको राज्य करना पड़ता है, ये क्षत्रियों का धर्म है। तो उनकी तरफ से भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के आए और शांति दूत बन के और धृतराष्ट्र के राज्यसभा में जाके उन्होंने कहा कि पांडवों का ये अधिकार है, उनका जो राज्य है आप उनको दे दो। तो उसने कहा कि नहीं मैं कुछ नहीं दूंगा। तो कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, मैं पांडवों के बिहाफ पे तुमसे सिर्फ पांच गांव मांगता हूँ, अगर तुम मुझे पांच गांव दे दोगे तो पांडव जो है वो पांच गांव में संतुष्ट हो जाएंगे, अपना वहां पे जो भी छोटा मोटा राज्य करना है वो करेंगे। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा कि पांच गांव तो दूर, मैं उसको सुई के नोक पे आवे उतनी भूमि भी नहीं दूंगा। तो जब उसने ऐसे कहा तो युद्ध होना अनिवार्य हो गया। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है। इंडीड दुर्योधन तो इतना मूर्ख था कि वो कृष्ण को भी बंदी बनाना चाहता था, तो एनीवे फिर कृष्ण वहां से चले जाते हैं, और तो उन्होंने मतलब इस युद्ध को रोकने का भरसक प्रयास किया, लेकिन अल्टीमेटली युद्ध युद्ध होना था, अनिवार्य था। तो ये जब सिचुएशन हो गई और दोनों सेनाएं आपस में रणभूमि में आके खड़ी रह गई और शंख बज चुके थे, बस युद्ध शुरू होने वाला है, उस समय अर्जुन वो भगवान के पास आके अपना गांडीव छोड़ देता है। तो ये जो भूमिका इसमें, जब ये दोनों सेनाएं आपस में आके खड़ी है तो धृतराष्ट्र वो राजा था लेकिन अंधा था, वो वहां पर प्रेजेंट नहीं हो सकता था, तो संजय जो उसका सेक्रेटरी था, उसका सारथी था, वो संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी व्यास देव जी से, जो वो दूर बैठे हुए भी उस युद्ध को देख सकता था दूरदर्शन की तरह। तो उसने धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा कि प्लीज टेल मी कि वहां पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र उवाच मतलब धृतराष्ट्र ने कहा, अर्जुन उवाच मतलब अर्जुन कहेगा, भगवान उवाच इस तरह से। तो एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ इस वर्ड उवाच पे, कि आप आगे बढ़ोगे और देखोगे तो जब धृतराष्ट्र कहता है तो धृतराष्ट्र उवाच, नेक्स्ट श्लोक आप देखोगे तो संजय उवाच लिखा है, तीसरा जब अर्जुन कहता है तो अर्जुन उवाच, लेकिन जब कृष्ण कहना शुरू करते हैं तो कृष्ण उवाच नहीं लिखा है, क्या लिखा है? श्री भगवान उवाच। तो एक और चीज इससे प्रूव करती है कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, और ये किसने लिखा है? गणेश जी ने समझ के लिखा है, ठीक है? नहीं तो कह सकता था, अरे धृतराष्ट्र के टाइम धृतराष्ट्र लिखवाया, संजय के टाइम संजय लिखवाया, अर्जुन के टाइम, तुम्हारे टाइम कृष्ण क्यों नहीं लिखवा रहे हो, भगवान क्यों लिखवा रहे हो? तो उसने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो सबसे पहले तो हम प्रयास करते हैं डिस्कस करने का। देखो एक तो ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही फुलिश क्वेश्चन है, प्रभुपाद जी अपने परपट में लिखते हैं। क्यों फुलिश क्वेश्चन है? क्योंकि वो खुद कहता है कि युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अभी जो आदमी युद्ध की इच्छा से एकत्र होगा वो क्या करेगा वहां पे?
युद्ध ही करेगा,
और तो कुछ करने वाला है नहीं। तो युद्ध करने के लिए ही वहां एकत्रित हुए थे, दैट वॉज द अल्टीमेट गोल, और उस गोल के लिए अभी जैसे आज शाम को बच्चे लोग डांस उधर जा रहे हैं और कोई आके उनसे पूछे कि यहाँ पर ये लोग क्यों आए, डांस के लिए आए लेकिन क्या करेंगे? अरे तो डांस के लिए आए तो स्विमिंग थोड़ी करेंगे, डांस ही करेंगे वहाँ, है कि नहीं? तो ऐसा एक फुलिश क्वेश्चन ये धृतराष्ट्र उनको पूछता है संजय को, और प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पे ही इसकी मेंटालिटी का पता चलता है कि सबसे पहले तो धृतराष्ट्र ने क्या कहा कि मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो उसने वहीं पर डिविजन कर दिया, बाइफर्केशन कर दिया कि भाई मेरे पुत्र अलग है तुम्हारे पुत्र अलग है। तो ये जो सिचुएशन है, पहले के जमाने में जैसे क्या होता था कि जॉइंट परिवार होता था, सब साथ में रहते थे बहुत सारे, तो इसके लिए ऑब्वियसली इतना भार किसी गृहिणी पे भी नहीं आता था और अच्छी तरह से सारा परिवार चलता था। लेकिन जैसे जैसे ये युग आगे बढ़ता जा रहा है परिवार जो है वो छोटे छोटे यूनिट में बढ़ता जा रहा है, और न्यूक्लियर यूनिट अभी केवल मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बस वहीं तक सीमित रह गया है वो। तो प्रभुपाद जी ये शुरू करते हैं और कहते हैं कि भगवद गीता एक बहुपाठिक आस्तिक विज्ञान है, वो उसको विज्ञान कह रहे हैं कि भगवद गीता जो है अच्छा, अभी ये बीच में आप कुछ डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिए, जिसको प्यास लगेगी वो अपने आप उठेगा, यू हैव फ्रीडम टू गो, प्लीज ड्रिंक एंड कम, नहीं तो क्या होता है कि वो एक इसमें बड़ा, एंड वी डोंट वांट दैट डिस्टरबेंस, यू नो
पार्टी का मोहल्ला बना
है, हाँ, मीनिंग इट इज, नहीं इट्स नॉट पार्टी बट इट्स अ डिस्टरबेंस इन बिटवीन, एनीवे सो कुछ डिस्ट्रीब्यूट मत करो, जिसको प्यास लगेगी, और हम तो पौना घंटा डिस्कस कर रहे हैं, 45 मिनट, यू नो 45 मिनट तो इतनी तपस्या कर सकते हैं हम लोग, राइट? तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता के संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे। तो देखो भगवद गीता घर पर बैठ के भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन ये बताते हैं कि भक्तों के संग में भक्त से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जैसे भी मेडिकल बुक्स है, हाँ, मार्केट में अवेलेबल है, आप मेडिकल बुक्स मार्केट से खरीद के भी पढ़ सकते, लेकिन मार्केट से पढ़ के आप डॉक्टर नहीं बन सकते। आपको क्या करना पड़ता है? एक तो इंस्टीट्यूट से जुड़ना पड़ता है जहाँ पे आप फॉर्मल पढ़ोगे, एक टीचर के अंडर में पढ़ना पड़ता है, तभी आपको वो चीज समझ में आती है, और फिर आपको एक डिग्री अवार्ड की जाती है कि हाँ भाई अभी आप डॉक्टर बन चुके हो। तो प्रैक्टिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो ज्ञान लेने के बाद भी क्या होता है कि प्रैक्टिकलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो उसको काम करना पड़ता है, जैसे जो सीए भी करता है उसको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, यू नो हर किसी को कोई ना कोई टाइप से प्रैक्टिकल करके ही समझ में आता है। और लास्ट टाइम मुझे पता नहीं शायद मैंने डिस्कस किया था कि नहीं, भगवद गीता का ज्ञान जो है ये गुरु परंपरा में प्राप्त किया जाना चाहिए। अभी गुरु परंपरा क्या है कि इस युग में चार बोनाफाइड परंपरा बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान था कि सबसे पहले ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया, तो उससे एक परंपरा आई जिसको ब्रह्म परंपरा कहते हैं। फिर उन्होंने ज्ञान अपनी पत्नी लक्ष्मी जी को दिया जिसको श्री भी बोलते हैं, तो उससे श्री संप्रदाय या श्री परंपरा जो आई है वो है। उसके बाद उन्होंने ये ज्ञान दिया शिव जी को, तो शिव जी को रुद्र भी कहते हैं, तो उनसे एक रुद्र परंपरा आई। और चार कुमारों को उन्होंने ज्ञान दिया था जिससे कुमार परंपरा आई। तो चार परंपरा के अंदर ये ज्ञान लेना चाहिए। ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी एक कारण है। शास्त्रों के अंदर एक श्लोक का उल्लेख है जिसमें कहते हैं कि दूध जो है मिल्क बहुत पौष्टिक आहार है, बहुत अच्छा है। अगर आप उस मिल्क को ग्रहण करोगे तो क्या होगा कि आपका स्वास्थ्य बढ़ेगा। लेकिन समझो उस दूध को, उस मिल्क को अगर किसी सांप ने टच कर लिया है, इफ इट इज टच बाय द लिप्स ऑफ ए स्नेक, तो वो दूध जो होता है वो पीने लायक नहीं रहता है, ठीक है। नहीं तो इसी प्रकार से कहते हैं कि कई बार कुछ लोग होते हैं जिनके मन में बहुत काम वासना भरी रहती है या कोई अलग तरह का उद्देश्य रहता है, ऐसे व्यक्ति से अगर हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो हालांकि ये ज्ञान वैदिक ज्ञान है लेकिन फिर भी क्योंकि उस व्यक्ति से हम सुन रहे हैं, उसका वो जो इमोशंस होते हैं वो भी हमारे कर्ण रंध्रों के माध्यम से हमारे हृदय में चले जाते हैं। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि भगवद गीता जो है हम परंपरा में सुने। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो शब्द है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और एक और चीज मैं बताता हूँ कि भगवद गीता का जो पहला ये वर्ड है धर्म, ओके, जो शुरुआत होती है या फिर लास्ट वर्ड जो है जो भगवद गीता समाप्त होती है जहाँ पे संजय अपना वर्डिक्ट देता है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयी नितिर मतिर ममा, तो कहते हैं कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण है, जहां पर अर्जुन है, वहीं पर श्री है, वहीं पर विजय है और वहीं पर सब कुछ है, धर्म भी वहीं पर है। तो ये पूरी भगवद गीता ध और म इसके बीच में समाई हुई है, मतलब धर्म की बातें करती है। और भागवत के अंदर यमराज जब यमदूत को उपदेश देते हैं तो उसमें कहते हैं कि एक्चुअली क्या होता है, इसके पीछे का बैकग्राउंड ऐसा है कि एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण होता है जो अल्टीमेटली अपने ब्राह्मण के पद से गिर के और बिल्कुल गलत कार्य करता है, और फिर उसके गलत कार्यों के वजह से, उसके पापों की वजह से जब वो मरने वाला होता है तो उसको यमदूत लोग लेने के लिए आते हैं। लेकिन वो एक्चुअली 80 साल की उम्र में भी एक वैश्या से शादी करता है और उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, और किसी साधु के कहने पर वो अपने पुत्र का नाम रखता है नारायण, और 80 साल में उसको पुत्र की प्राप्ति होती है तो बहुत अटैच होता है उससे, हमेशा नारायण इधर आओ, नारायण उधर जाओ, नारायण ऐसा करो, नारायण वैसा करो। तो जब मृत्यु का टाइम आता है ना, तो ये बात भी सत्य है कि हम लोग जिस चीज से सबसे ज्यादा आसक्त रहते हैं ना मृत्यु के समय, उसी को याद करते हैं, और कुछ नहीं आता है हमारे सामने। जिस चीज में हमारी आसक्ति है वो व्यक्ति उसी को प्राप्त करेगा। और भगवद गीता में भगवान ने सूत्र भी बताए हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम तेजन तंते कलेवरम, कि जो मरते समय जो भाव लेते हुए, जो सोचते हुए मरता है वो उसी भाव को प्राप्त कर लेता है। तो ये बहुत डेंजरस है कि अगर हमने पूरे जिंदगी भर, जैसे कई लोग हमको कहते हैं कि प्रभु जी क्या ये कोई गीता सीखने का हमारा उम्र है अभी, यू नो जब बूढ़े हो जाएंगे तब हम गीता सीखेंगे, लेकिन बूढ़ा होने पे सबसे पहले तो ये होता है कि व्हेन वी रीच टू दैट एज, इवन अभी भी इस एज में भी जो हम फॉर्चुनेटली साथ में आए हैं, बच्चों को कई बार सिखाना बहुत ईजी होता है, बड़ों को बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज बिग पीपल आर लाइक देयर माइंड इज लाइक कॉन्क्रीट, थरोली मिक्सड एंड परमानेंटली फिक्स्ड, उसको कुछ नहीं कर सकते, चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, अनलेस एंड अंटिल भगवान की कृपा होवे बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो कहते हैं कि बुढ़ापे में हम पढ़ेंगे लेकिन बूढ़ा होंगे नहीं होंगे, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, और जीवन भर जो हमने प्रयास किया है अल्टीमेटली हमारे को वही चीज याद आएगी, राइट। जैसे अभी मैं आपको एक बताता हूँ, एक बार एक व्यक्ति था और उसके मरने का समय आया, वो अपने पलंग पे लेटा हुआ था, उसका पूरा परिवार उसके आजू बाजू में जमा था, उसके तीन बेटे, नौकर चाकर, पत्नी सब थी, और सब उसके आजू बाजू में बैठे और राम का नाम ले रहे हैं, और उसको भी कह रहे हैं कि आप राम का नाम लो, अभी आपका समय आ गया है, उसको तुलसी गंगा जल वगैरह सब का अरेंजमेंट करके रखा है उन लोगों ने। तो वो आँख बंद करके ऐसा पड़ा हुआ है, अचानक आँख खोलता है और कहता है कि सुरेश कहाँ है, इसका बड़ा बेटा। तो सुरेश बोलता है पापा मैं यहीं पे हूँ। आप बस राम का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए, आप चिंता मत कीजिए। थोड़ा इधर आँख बंद होती है, खोलता है, बोलता अनिल कहाँ है, तो दूसरा बेटा, तो अनिल बोलता है अरे पापा मैं भी यहीं पे हूँ, आप चिंता मत करो, आप यू नो बस राम का नाम लो। फिर तीसरा आगे होता है तो कहता है कि महेश कहाँ है, छोटा लड़का, तो बोलता महेश इधर ही है, बोले आप चिंता मत करो। तो फिर ऐसे आँख बंद करके और वापस थोड़ी देर बाद आँख खोलता है और पूछता है कि रामू कहाँ है, उनका नौकर। तो रामू भी पैर के पास बैठा रहता है, रामू बोलता है कि पापा मैं भी यहीं पे हूँ मालिक, आप चिंता मत करो, आप बस केवल राम का नाम लो, राम का नाम लो। तो सोचता है कि यू नो महेश इधर है, अनिल इधर है, सुरेश इधर है, रामू इधर है, सब है, तो दुकान पे कौन है। तो उसको मरते टाइम उस दुकान की चिंता है कि भाई तुम लोग सब इधर है तो मेरा धंधा कहाँ चल रहा है ना। आसक्ति जो होती है, एक बार ऐसा व्यक्ति होता है बहुत आसक्त होता है अपने पैसों में और बिजनेस में और इन सब में, लेकिन उसका बेटा भक्त बन जाता है तो सोचता है कि यार पापा को अभी बहुत समय तो नहीं है, इनको तो कहीं थोड़ा बहुत कुछ इनका कुछ करना चाहिए। तो बोले मैं खुद तो प्रचार करूंगा तो सुनेंगे नहीं, तो किसी और से करवाते हैं। तो कोई यात्रा जा रही थी, उस यात्रा के अंदर उनको भेज दिया पिताजी को, तो बोले कि जाओ पिताजी यात्रा में तुम जाओ। तो यात्रा अलग 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 जगह पे जा रहे थे, तो बनारस में काशी में गए, तो वहां पर आपने शायद सुना रहेगा मणिकर्णिका घाट है, तो वो सब जगह घूम रहे थे और मणिकर्णिका घाट पे वहां पे जाके बैठे। तो वहां क्या होता है, मणिकर्णिका घाट किस लिए फेमस है,
अंतिम संस्कार,
वो अंतिम संस्कार के लिए फेमस है। हर कुछ क्षणों में वहां पे कोई ना कोई मुर्दा जलते रहता है और कंटिन्यूस ये काम चालू रहता है। तो वो वहां पर बैठता है और वहां बैठ के और बहुत ही एकदम गंभीर हो जाता है, वो बहुत सीरियस होके बहुत गहन विचार ऐसा करने लगता है। तो दूसरों को लगता है कि अरे अभी शायद इसको थोड़ा यू नो इसकी आसक्ति थोड़ी दूर हो गई है, शायद ऐसा लगता है कि इसको भी वैराग्य आ रहा है। तो वैराग्य आके उसको पूछते बोलते हैं कि अच्छा अंकल जी अभी समझ में आया ना कि शरीर कितना नश्वर है, इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस चले जैसे घासा, के जो हड्डी है लकड़ी की तरह जल जाती है, केस हमारे जिसको इतना सजारते संवारते हैं लोग तुरंत घास की तरह एक सेकंड के अंदर जल जाता है और कुछ नहीं हाथ में आता। तो बोले कि अभी आपको वैराग्य प्राप्त हो गया ना, तो बोलता है कि अरे यार मैं सोच रहा हूँ कि पूरे जीवन भर मैंने कपड़ों का बिजनेस किया, अगर लकड़ी का बिजनेस किया होता तो कितने पैसे कमाता। उसकी सोच वहां पे थी क्योंकि पूरे जीवन भर उसमें आसक्त था,
कितना फोकस था,
हाँ उसका फोकस देखो कितना था, लेकिन गलत चीज के लिए था।
ऐसी व्यक्ति को क्या
प्राप्त होगा, वृक्ष बनेगा, कोई उसको काट के फिर वापस लकड़ी में यूज करेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारी जिस प्रकार की इच्छाएं रहती है ना, जैसा भी एक सिंपल आपको ग्रॉस एग्जांपल देता हूँ कि कुछ लोगों को नग्न रहने की बहुत इच्छा रहती है, कि कपड़े कम पहनने की इच्छा करते हैं, ऐसे लोगों को भगवान वृक्ष बनाते हैं, कहते हैं कि कपड़े कम पहनने वृक्ष बन जाओ। किसी को तैरने का बहुत मजा आता है, भगवान बोलते हैं कि अब तुम ह्यूमन फॉर्म में कितना तैर पाओगे, जाओ मछली बनो अच्छी तरह से। किसी को मांस खाने की बहुत इच्छा होती है तो भगवान उसको क्या करते हैं, शेर चीता कुत्ता ऐसा कुछ बना देते कि भाई तू आराम से मांस खा ना, मतलब यू टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट एक्चुअली, यू नो मतलब ऐसा। किसी को सोने की बहुत इच्छा होती है, मैं हाथ उठाने नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत कुछ लोग सोने के लिए
एकदम खाने की सोने की होती है। देखा
नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात
नहीं।
तो भगवान कहते हैं यू बिकम ए पोलर बेयर,
पोलर बेयर
छह महीने सोता है, आराम से वो। तो एनीवे, तो जो जैसी यू नो इच्छा से कार्य करता है उसके ऊपर उस तरह का असर होता है।
ये भी पोलर बेयर ही बनेंगे क्योंकि सात जन्मों का रिश्ता है।
अच्छा इसके बारे में क्या कहना है आप,
जब क्वेश्चन आंसर का टाइम आएगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे। नहीं और एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या होता है, अभी ये पॉइंट में क्योंकि पहली क्लास ही है लगभग, मैं आपको बोल देता हूँ कि ये प्रश्न भी ना जब पूछना रहता है तो इसकी भी एक विधि है। एक तो एक नंबर वन के रिलेटेड होना चाहिए नो, और सच में हमको मतलब ये क्वेश्चन खाली पूछने के लिए नहीं पूछ रहे हैं कि हमको सच में उसको समझना है, और देर इज ए यू नो परफेक्ट सिंसियरिटी बिहाइंड दिस, देन वी शुड एक्चुअली आस्क द क्वेश्चन, बट अदरवाइज नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। तो एनीवे हम कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे। तो गीता जो है धर्म, एनीवे मैं आपको अजामिल की स्टोरी बता रहा था। तो अजामिल का जो बेटा था उससे बड़ा आसक्त था वो, और चलो मैं दो चीज कनेक्ट करते हुए बताता हूँ। जैसे धृतराष्ट्र का मतलब क्या है, धृत का क्या मतलब होता है, किसी को पता? मैंने लास्ट टाइम बताया था शायद किसी ने घी कहा भी था लास्ट टाइम जब मैंने कहा था तो किसी ने घृत कहा भी था तो धृतराष्ट्र होता है डिटरमाइंड दृढ़ और राष्ट्र राष्ट्र के लिए तो जो राष्ट्र के लिए डिटरमाइंड है उसकी राष्ट्र में आसक्ति है इसके लिए उसको धृतराष्ट्र कहते हैं उसका नाम इसीलिए पड़ा कि उसकी बहुत आसक्ति थी किसी भी कीमत पर वो उस गद्दी को छोड़ना नहीं चाहता था उसको प्राप्त नहीं हुई तो हमने लास्ट टाइम यू नो मैं तो इंजीनियर नहीं बन सका बेटा तू तो बन मैं तो डांस नहीं सीख सकी तू तो सीख ये एग्जांपल मैंने दिया था आपको आपको याद हो तो मुझे तो राष्ट्र नहीं मिला दुर्योधन कम से कम तुझे तो मिले उसकी आसक्ति उसी के अंदर थी पूरा तो ये आसक्ति बहुत खतरनाक होती है जिस चीजों के अंदर हम लगा के रखते हैं उससे निकलना इतना आसान नहीं होता है लेकिन गीता उसका सोल्यूशन बताती है जो हम आगे आगे धीरे धीरे जब बढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा तो उस पुत्र में उसको आसक्ति थी लेकिन भगवान की दया से उसका नाम नारायण था जब उसको यमदूत लोग लेने आए तो यमदूत बाय द वे दिखते बहुत डेंजरस है हाँ तो कई लोग ऐसे हैं कि जिनको हॉरर मूवी देखने की बहुत इच्छाएं होती है तो उनका कभी यमदूतों से पाला पड़ा रहेगा यू नो सो दैट एटलीस्ट दे रियली एंजॉय तो वो जब आए तो इतना भयंकर वो दिख रहे थे कि वो देख के डर गया और डर के मारे जोर से किसमें आ सकती थी पुत्र में तो जोर से उसका नाम चिल्लाया नारायण बट क्योंकि उसके पुत्र का नाम नारायण था तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों का नाम भी रखते हैं तो इंकी पंकी डोंकी के बदले कुछ इस तरह से ऐसे नाम रखना चाहिए कि जिसका कोई मीनिंग हो भगवान से रिलेटेड तो अगर मरते समय अगर उनमें आसक्ति भी हो गई तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एनीवे तो नारायण चिल्लाया तो तुरंत क्या हुआ विष्णुदूत वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने यमदूतों को रोका और कहा कि नहीं अभी तुम इसको लेके नहीं जा सकते अभी इसको हम लेके जाएंगे क्योंकि नारायण का नाम लिया है और भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि जीवन भर पाप किया उसने लेकिन एक बार भगवान का नाम लिया विष्णुदूत लेने आ गए तो कई बार कुछ सयाने लोग होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि प्रभु जी फिर इतना सब मगजमारी करने की क्या जरूरत है ये गीता भागवत क्यों पढ़ने का इतना चैंटिंग क्यों करने का मरते टाइम एक बार भगवान का नाम ले लेंगे हमारा उद्धार हो जाएगा है कि नहीं लेकिन ऐसा नहीं होता है जैसे दुकान में कौन है उसकी जो आसक्ति थी या लकड़ियों में जो तो उस टाइम पे हमारी भी कहीं आसक्ति वहीं नहीं चली जाए तो बिना प्रैक्टिस के वो भगवान का नाम भी हमारे मुख पे नहीं आएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों ऐसा है क्योंकि भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं कृष्ण कहते हैं गीता में ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथे वो भजाम्य जो मेरे पास जिस इच्छा से आता है मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूं अगर आप कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं तो कृष्ण आपसे प्रेम करेंगे आप कृष्ण से युद्ध करना चाहते हैं तो कृष्ण आपसे युद्ध करेंगे कंस युद्ध करना चाहता था चाणूर मुष्टिक युद्ध करना चाहते थे तो उन्होंने युद्ध किया जो प्रेम करना चाहता था उनके साथ भगवान ने प्रेम का आदान प्रदान किया तो अगर आप भगवान से छल करना चाहते हैं तो भगवान गीता में कहते हैं कि छल करने वालों में मैं जुआ हूं मुझसे बड़ा छलिया कोई नहीं है, है कि नहीं भगवान सबसे बड़े छलिया है तो कोई सोचेगा कि ऐसा लेकिन वो लकी था उसने नारायण का नाम लिया और विष्णु दूत वहां पर आ गए और यमदूतों को उन्होंने भगा दिया तो यमदूत जाके यमराज से कहने लगे कि ओ माय डियर मास्टर हमारे अलावा भी कोई है क्या जो किसी का फैसला करता है हमारा डिपार्टमेंट है फैसला करने का कि कोई किसको नर्क में ले जाना है किसको स्वर्ग में ले जाना है क्या करना है तो आज पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने आके हमको रोका है तो बताओ हमको तो यमराज वहां पर फिर यमदूतों को उपदेश देते हैं बहुत बड़ा उपदेश है और कहते हैं कि 12 लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो भगवान को असली में जानते हैं मैं उनमें से एक हूं तो बेसिकली 12 महाजनों का वो नाम लेते हैं जिसमें बहुत सारे हमारे बड़े बड़े महाजन हैं जैसे भीष्म पितामह भी एक महाजन है जो भगवान को अच्छी तरह जानते हैं शिव जी नारद ब्रह्मा जी ये सब जो है प्रहलाद ये सब महाजन में आते हैं कैटेगरी में जनक महाराज तो कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसने भगवान का एक बार भी नाम ले लिया है हा? उस व्यक्ति को तुम मेरे पास मत लेके आना उसकी कोई सजा नहीं होगी जिस व्यक्ति ने तिलक धारण किया है कंठी माला पहन के रखा है वो अगर अपना शरीर छोड़ता है तो उसको मेरे पास नहीं लाना है क्योंकि वो विष्णु का भक्त है और वो धर्म का आचरण कर रहा है तो वो पूछते हैं कि धर्म है क्या तो उस समय यमराज यमदूतों से कहते हैं कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम कि जो भगवान के मुख से निकल गया वो धर्म है मतलब भगवान ने जो बोल दिया वो धर्म है इसलिए आप सोचो आप जो फेडरल लॉ भी यहाँ पे होता है अगर आप कोई अगर लीगल फील्ड में थोड़ा बहुत आपको कुछ ज्ञान होगा या कॉन्ट्रैक्ट देखते रहेंगे तो उसमें कि दिस एक्ट इज प्रोमुलगेटेड बाय स्पोकन बाय यू नो हिज हाइनेस शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान और साइंड ऐसा तो प्रोमुलगेटेड वो बोलते हैं तो जो गवर्नमेंट ने बोल दिया वो लॉ है गवर्नमेंट ने बोला कीप टू द लेफ्ट वो लॉ है, कीप टू द राइट वो लॉ है। आप इंडिया में राइट में गाड़ी चलाते, इधर आके नहीं बोल सकते अरे मैं तो राइट में चलाऊंगा, नहीं, आपको उसका पालन करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो धर्म क्या है, जो भगवान ने कह दिया वो धर्म है, जो भगवान ने नहीं कहा वो अधर्म, मतलब भगवान ने के अलावा कही हुई जो बातें हैं वो सब अधर्म है, और जो जो भगवान ने कहा है। अभी जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको ये स्टोरी मालूम है कि एक बार द्रोणाचार्य जब बीच में भीष्म पितामह के गिरने के बाद में द्रोणाचार्य इतनी स्पीड से युद्ध कर रहे थे तो ऐसा लगता था कि यू नो टेस्ट मैच है वनडे में खत्म हो जाएगा, इतना भयंकर युद्ध, क्योंकि वो तो सबके गुरु थे, सबसे ज्यादा गुरु को ही आइडिया रहती है चाहे चेला कितना भी कुछ भी कर ले, तो इतना घमासान युद्ध कर रहे थे और सबको लग रहा था युद्ध एक दिन में खत्म हो जाएगा, तो कृष्ण ने सोचा कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा अगर ऐसा करेंगे तो इनको रोकना पड़ेगा। लेकिन द्रोणाचार्य को रोका कैसे जाए, तो उनको पता चला कि द्रोणाचार्य की केवल एक चीज में आ सकती है, देखो वापस हम लोग आ सकती के पॉइंट पे आए, एक चीज में द्रोणाचार्य की आ सकती है और वो उसके पुत्र में, उसके पुत्र में उसकी आसक्ति है, और बहुत उस पुत्र की आसक्ति की वजह से इतना बड़ा उसने काम किया था, क्योंकि द्रोणाचार्य जो थे वो ब्राह्मण थे, उनका काम क्या था, यजन या पठन पाठन यजन याजन वो थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, क्षत्रिय का रोल निभाया और क्षत्रियों को जाके और उन्होंने कहा भी कि कोई ब्राह्मण ब्राह्मण को मैं शिक्षा नहीं दूंगा, केवल राज के जो राजगुरु के जो राजकुल के जो लड़के हैं उनको ही मैं पढ़ाऊंगा बस, इसलिए एकलव्य को और कर्ण को किसी को उन्होंने नहीं पढ़ाया था। तो बोले कि इसमें बहुत आसक्ति है उसकी, तो अगर कोई जाके अश्वत्थामा के बारे में कुछ कहेगा तो ये शिथिल पड़ेंगे, ढीले पड़ेंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो कृष्ण ने एक युक्ति सोची, उसने युधिष्ठिर को कहा, उसने कहा कि अभी अगर कोई जाके बोलेगा तो भी ये बात तो मानेगा नहीं किसी की, ये केवल युधिष्ठिर का मानेगा क्योंकि युधिष्ठिर ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है। तो युधिष्ठिर को जाके बोला, बड़े भैया थोड़ा एक सेवा करनी है, थोड़ा करो करके। बोले क्या है, बोले जाके बोल दो अश्वत्थामा मर गया। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा कि लेकिन वो तो नहीं मरा है। कृष्ण को कहा लेकिन वो तो नहीं मरा है। तो बोला यार मैं बोल रहा हूँ इसके लिए जाके बोल दे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं मैं नहीं बोलूंगा। तो कई बार क्या होता है कि कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि उनका 10,000 आरती भी उतारो कुछ भी कहो वो नहीं मानते, बात नहीं मानते हैं। कभी कभी हमारे बच्चों में ये गुण देखने को मिलते हैं या कुछ है, कितना भी आप कह दो लेकिन वो नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। लेकिन भगवान भी जो है ना देखो कभी जबरदस्ती नहीं करते हैं। तो उन्होंने उधर सुदर्शन नहीं निकाला और युधिष्ठिर को बोला देख बोलता है या फिर ही गिव्स फ्री विल फ्रीडम। भगवान पूरा पूरा फ्री विल देते हैं सबको, हमारे को भी सरेंडर करने के लिए। किसी को आके बंदूक रख के नहीं बोलते कि आपको सरेंडर करना है। पूरी भगवद गीता सुनाई भगवान ने अर्जुन को और लास्ट में क्या कहा आपको पता है, अर्जुन को क्या कहा भगवान ने, हाँ यथा इच्छसी तथा कुरु, कि तेरी जो इच्छा है वो कर, मैंने तेरे को बता दिया। एंड देन अर्जुन भी ऑब्वियसली कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था, उसने कहा
ये भी पूछा था ना तुम्हें समझ में आया कि नहीं,
हाँ ये भी कहा समझ में आया कि नहीं आया, तेरा मोह नष्ट हो गया कि नहीं हुआ, आसक्ति तेरी चली गई कि नहीं चली गई। देखो आसक्ति के पॉइंट में मैं वापस से आऊंगा। तो लेकिन यार अर्जुन ने कहा कि नहीं अभी करिष्ये वचनम तव, आपने जो कहा मैं वही करूंगा क्योंकि यही मेरे लिए सबसे बेस्ट है। अश्वत्थामा तो युधिष्ठिर को जबरदस्ती नहीं की उन्होंने, उन्होंने कहा कि ठीक है नहीं करता है। तो उन्होंने क्या किया, भीम के पास गए और भीम तो पूरा सरेंडर्ड सोल था। तो उसने बोला कि कृष्ण ने कहा कि देखो ये सामने हाथी दिखाई दे रहा है। बोला हाँ इसका नाम अश्वत्थामा है। तो समझ गया क्या करने का, वो गया टेबल टेनिस बॉल की तरह था, वो हाथी उठा के पटका, वहीं हाथी को मार दिया और चिल्लाने लगा मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। और ऐसा करके द्रोणाचार्य के पास में गया और द्रोणाचार्य ने क्या किया, सीधा युधिष्ठिर के पास गया, क्योंकि एक तो बड़ा झटका लगा उनको सुन के अश्वत्थामा मारा गया, और जबकि उनको ये बात पता था कि अश्वत्थामा मर नहीं सकता, वो तो चिरंजीवी है। लेकिन फिर भी उस समय उनका जो बोलते ना डगमग हो गए, वो एक्चुअली मनोबल उनका था। कई बार हमारे साथ भी जीवन में ऐसा होता है कि हमको पता है लेकिन फिर भी बोलता है पता नहीं ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ में, है ना, ऐसे सिचुएशन आते हैं हमारे जीवन में। तो तुरंत गया और जाके युधिष्ठिर को बोला कि ये सच बोल रहा है क्या। तो युधिष्ठिर क्या बोलता है, अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा मारा गया पर हाथी है आदमी वो मुझे पता नहीं, ऐसा करके उसने कहा। तो जैसे उसने कहा युधिष्ठिर ने कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया, एक्चुअली इस तरह से उसने कहा था, तो जैसे उसने हाथी कहा कृष्ण ने शंख बजा दिया। तो कृष्ण ने क्या कहा, तो उसको क्या सुनाई दिया द्रोणाचार्य को, अश्वत्थामा मर गया। तो ऐसा लगता है इसकी इसकी सुना रहे हैं और वो भी मतलब म्यूजिक के साथ में समाचार दिया जा रहा है। और तब जाके द्रोणाचार्य शिथिल हुए, उन्होंने शस्त्र रख दिए और दृष्टद्युम्न ने जाके उनको मारा। लेकिन यहाँ पर जब कृष्ण युधिष्ठिर को कह रहे थे कि जाके बोल, युधिष्ठिर ने क्या कहा, मैं नहीं बोलूंगा। तो ये ऐसा है कि जैसे समझो आप सिग्नल पे खड़े हैं और सिग्नल रेड है तो ऑब्वियसली आपको क्रॉस नहीं करना है, लेकिन ट्रैफिक हो गई है, वहां पे पुलिस आई हुई है, ट्रैफिक हवालदार उसको मैनेज कर रहा है और आपको बोलता है चल आगे चल, और आप उसको बोलो नहीं ये सिग्नल देख, तो वो क्या करेगा, आपको फाइन लगाएगा उसको सिग्नल दिखाने के लिए। वो बोलेगा मैं बोल रहा हूँ तेरे को, यहाँ पे ट्रैफिक हवालदार मैं हूँ, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, तू आगे बढ़, तो तू मुझे सिग्नल दिखा रहा है। तो वैसे ही कृष्ण युधिष्ठिर को बोल रहा है कि यार धर्म का पिता मैं हूँ और तू मुझे धर्म सिखा रहा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे मैं बोल रहा हूँ तुझे बोलने के लिए, तेरा क्या प्रॉब्लम है, मैं धर्म का पिता हूँ ना, धर्म मैंने बनाया। जैसे यहाँ पर समझो अगर शेख खलीफा आके कुछ बोल देते हैं तो बोलो नहीं नहीं ये तो गलत है, बोले मैं बोल रहा हूँ यार करना, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, है ना। जो भी गलत वाले जो कुछ भी है, क्योंकि उसने आदेश दे दिया है, तो भगवान धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो यमराज क्या कहते हैं यमदूत से कि जो भगवान ने कहा, मतलब ये जो गीता जो है क्या है, ये धर्म है। जो गीता में लिखा हुआ एक एक शब्द एक एक श्लोक जो है वो धर्म का प्रतीक है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अभी कुरुक्षेत्र का क्या उपयोगिता है, तो सबसे पहले बहुत सारे कारण है कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। ये ऐसा कोई राइमिंग करने के लिए नहीं लिखा है श्लोक, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र अच्छा लगता है, चलो राइमिंग राइमिंग हो गया तो ऐसा नहीं। और मजे की बात, ये श्लोक सुना कौन रहा है, क्या कौन संजय कौन सुना रहा है श्लोक, हाँ आप लोग है ना, हाँ ये धृतराष्ट्र सुना रहा है। तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कौन बोल रहा है, धृतराष्ट्र बोल रहा है। ये कोई ऑर्डिनरी कोई युधिष्ठिर नहीं बोल रहा है कि हाँ लगा के बोल दिया ऐसा नहीं। तो इवन धृतराष्ट्र जानता था कि ये भूमि जो है कुरुक्षेत्र, ये धर्म भूमि है, ये धर्म भूमि है, राइट। सो धर्म भूमि है ये धृतराष्ट्र भी जानता था उसको। तो इसके बहुत सारे कारण है, एक कारण तो ये कि वेदों में इसका मेंशन है, नंबर वन, ओके, कि ये कुरुक्षेत्र जो है ये धर्म भूमि है। दूसरा, इसमें एक महाराज कुरु थे जिन्होंने इस भूमि को सींचा था और वो इस भूमि को धर्म भूमि बनाने के लिए ऐसा चाहते थे कि इसके अंदर मैं कुछ धर्म के बीज बोऊं। तो उन्होंने बहुत भयंकर तपस्या की और बहुत हजारों साल तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट हुए और भगवान से उन्होंने कहा कि ये भूमि जो मेरी भूमि है इसको मैं धर्म क्षेत्र बनाना चाहता हूँ, तो कृपया मुझे कुछ ऐसे कुछ उपाय बताइए या कुछ बीज दीजिए मुझे जो मैं इसमें डाल के इसको धर्म, तो यहाँ धर्म की फसल हो। तो भगवान ने उनको कहा कि नहीं बीज बीज तो नहीं है, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, आप अगर आपका दाहिना पैर काट के इसको जमीन में गाड़ते हो तो ये धर्म भूमि बन जाएगी। तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ तुरंत अपना एक पैर काट के दाहिना पैर जमीन में गाड़ दिया। सोचो राजा ऐसे होते थे कि अपने लिए कुछ नहीं लेकिन दूसरों का भला करते थे, ये राजा की पहचान है एक्चुअली। तो उन्होंने किया लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं दिस इज नॉट सफिशिएंट, दूसरा पैर भी देना पड़ेगा। तो उन्होंने दूसरा पैर काट के भी दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं आई थिंक अपना दाहिना हाथ, फिर बायां हाथ, सब गाड़ दिया जमीन के अंदर। और फिर उन्होंने भगवान ने कहा कि नहीं आई थिंक तुम्हारा सर भी अंदर जाना पड़ेगा तब जाके ये धर्म भूमि बनेगी। और जैसे ही वो अपना सिर काटने वाले थे, कोई उनका सिर काटने वाला था, तो भगवान ने उनको रोका और कहा कि नहीं मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तो भगवान ने तुरंत हाथ पैर उनके वापस रिटर्न कर दिए और उन्होंने कहा कि अभी तुमने इसको सींचा है और जिस मन से सींचा है ये भूमि जो है वो धर्म भूमि बनेगी। तो ये उसका दूसरा कारण था। तीसरा, क्योंकि भगवान स्वयं वहां पर उपस्थित थे और भगवान की वाणी वहां पर निकलने वाली थी, ये भगवद गीता आने वाली थी, इसके लिए भी उस भूमि को धर्म क्षेत्र कहा गया है। और भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत के रूप में जब वो घूम रहे थे और फिर भी अल्टीमेटली उन्होंने देखा कि अभी युद्ध होना तो अनिवार्य है, तो चाहते थे कि एक युद्ध के लिए एक स्थान चाहिए था उनको कि जहां पर ये युद्ध हो सके, है कि नहीं, क्योंकि बैटल फील्ड होता था उस जमाने में। तो वहां पर तो भगवान पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे कि कोई ऐसा स्थान चाहिए यू नो जो पूरा आसक्ति से विहीन है, क्योंकि वो भगवान जानते थे कि अर्जुन जब भी युद्ध करने के लिए आएगा तो आसक्ति का शिकार हो जाएगा वो। तो सोचे कि ऐसा कोई मैं प्लेस डिसाइड करूं कुरुक्षेत्र जैसे उन्होंने ढूंढा था कि उस प्लेस में यू नो आसक्ति बहुत कम रहे या ना होवे, तो जाके तो वो जब ऐसा घूम रहे थे तो इस प्लेस में आए वो कुरुक्षेत्र में, तो उन्होंने क्या देखा कि किसान है जो वहां पर अपने खेती का काम कर रहा है और खेती के अंदर अपनी उसकी फसल जहां जा रही थी वहां पर वो अरट से पानी निकल रहा था और पानी उस खेत में जा रहा था। तो कभी कभी क्या होता है कुछ फसल के लिए बहुत ज्यादा पानी लगता है, कुछ फसल के लिए बहुत ज्यादा नहीं लगता, तो अगर ज्यादा पानी भी चले जाए तो प्रॉब्लम है। तो वो जो पानी का फ्लो था जो कोई नदी में से आ रहा था उस फ्लो को रोकना चाहता था, तो उसने क्या किया एक लकड़ी उठाया और लकड़ी उठा के जैसे एक पाली बनाते हैं ना ऐसे पाली कुछ बनी हुई थी और उसमें वो लकड़ी को डाल रहा था। तो जैसे ही वो लकड़ी को अंदर डाल रहा था वो फोर्स से लकड़ी वापस उखड़ जाती थी और निकल जाती थी, पानी वापस जा रहा है। तो बार बार वो बेचारा कोशिश कर रहा था और वो लकड़ी बैठ नहीं रही थी बरोबर से, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया। तब क्या हुआ कि उसका छोटा बच्चा आया वहां पर और उसकी धोती खींचने लगा और पापा 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 मुझे कुछ चाहिए, ऐसा कुछ तो मांग रहा होगा ऐसा। अब वो बेचारा इतना टेंशन में था तो उसने क्या किया, आओ देखा ना था, उसने अपने लड़के को उठाया और उसको ही वहां पे दबा दिया तो वो एकदम फिट हो गया। तो भगवान ये दृश्य देख रहे थे कृष्ण के, अरे ये क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा अपने बच्चों में आसक्ति होती है, यू नो मतलब आप कुछ भी हो पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहला मतलब हमारा हर कोई जो होता है वो बच्चों के ही। तो बोला इतना निरक्ष यू नो अनासक्त आदमी है कि इसने अपने बच्चे को यहाँ लगा दिया। तो फिर भगवान ने सोचा कि हो ना हो इस भूमि का बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति अपने बच्चों को यहाँ फिट कर सकता है तो मैं अर्जुन को यहीं पे लेके आऊंगा, क्योंकि जब वो यहाँ युद्ध करेगा तो क्योंकि ये धर्म भूमि है इस कुरुक्षेत्र में उसकी आसक्ति कम हो जाएगी। और इतना होने के बाद भी अर्जुन 40 श्लोक सुना रहा है भगवान को कि भाई मेरे को युद्ध नहीं करना है। तो सोचो भगवान भी उधर बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि यार इतना ढूंढ ढांढ के प्लेस निकाला मैंने और फिर इतने क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर कहीं और ऑर्डिनरी प्लेस पे तो चले गए रहते तो 400 प्रश्न पूछ रहे थे तूने मुझसे, यू नो कितना कुछ होगा। तो भगवान वही देख रहे थे कि भाई ये भूमि जो है वो मेरे को ढूंढनी है। और ये कौन बोल रहा है, धृतराष्ट्र बोल रहा है कि धर्म क्षेत्र, क्योंकि वो जानता था कि ये जो भूमि इन्होंने चूज की है लड़ने के लिए ये धर्म क्षेत्र है और धर्म का प्रभाव होने की वजह से क्या होगा कि पांडव तो ऑलरेडी धार्मिक है और मेरा पुत्र अधार्मिक है, वो निश्चित रूप से हारेगा या फिर वो कॉम्प्रोमाइज कर बैठेगा कि भाई नहीं युद्ध नहीं करना है। तो वो नहीं चाहता था कि युद्ध न हो, वो चाहता था युद्ध हो, इसके लिए किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहता था कि भाई युद्ध नहीं होवे, तो वो चाहता था। इसलिए वो कहता कि युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए क्या किया उन्होंने बताओ, तो संजय कहता कि हाँ अभी युद्ध कर रहे हैं। तो ये धृतराष्ट्र जो अपने राष्ट्र से इतना आसक्त था, तो वैसे ही हम लोगों ने भी अपने राष्ट्र बना के रखे हैं, है कि नहीं, छोटे छोटे 1200 स्क्वायर फीट, 1400 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट विला जो भी है, लेकिन अपने अपने राष्ट्र हमने बना के रखते हैं और उनसे हम आसक्त हैं कि भाई ये मेरा राष्ट्र है। या फिर कुछ लेवल पे किसी की आसक्ति और थोड़ी बड़ी रहती है, कोई थोड़ा कोई अपने केवल परिवार से आसक्त होता है, कोई अपने परिवार से और थोड़ा आगे अपने समाज से आसक्त होता है, फिर कोई अपने गांव से आसक्त होता है, फिर कोई गांव से अपने शहर में आसक्त होता है या अपने डिस्ट्रिक्ट में आसक्त होता है, बड़े इन्होंने चाव से बोलेगा मैं पाली डिस्ट्रिक्ट से हूँ या मैं ये नागौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ या मैं ये यहाँ पे ये हमारा गांव है और मैं इस गांव का सिंगम हूँ ऐसा कुछ। तो सब अपने 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 राष्ट्र, फिर कोई और ज्यादा रहेगा तो देश से प्रेम करेगा, लेकिन ये सब जो है ये इज्म है, ISM, यू नो सोशलिज्म, नेशनलिज्म, ये सारे के सारे एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन इसको बोलते हैं। सबसे लोअर सेंस ग्रेटिफिकेशन मेरा खुद का, एको अहम द्वितीय नास्ति न भूतो न भविष्यति, मैं केवल और मैं, उससे थोड़ा और जो है मेरा परिवार भी, मैं अकेला ही नहीं बस उसका, तो वो एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन है। पहला सेंस ग्रेटिफिकेशन मेरा, फिर मेरे परिवार का और फिर समाज का, देश का, और इस तरह से। तो इतना सारा जो हमने अपने ये राष्ट्र बना के रखे हैं, चाहे वो देश है, चाहे वो कम्युनिटी है, चाहे वो पूरा इंटरनेशनल है या जो कुछ भी है, यूनाइटेड नेशंस है, या प्रभुपाद कहते हैं कि व्हाट यूनाइटेड नेशंस, हर दिन हर साल वहां पर झंडे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, यू नो द यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर पीस बट इट इज डिवाइडेड इनटू पीसेस, यू नो इतने सारे झंडे बढ़ रहे, इसका क्या मतलब है कि पीस है ही नहीं, है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हम भी अपने अपने राष्ट्र बना के बैठे हैं तो ये हमको जब गीता पढ़ते हैं या ये श्लोक पर्टिकुलरली जब पढ़ रहे हैं तो हमको समझ में आना चाहिए कि क्या हम भी धृतराष्ट्र की तरह आसक्त है या नहीं है, कितनी आसक्ति हमने लगा के रखी है और किस आसक्ति पे हम लोग जाके, और क्या होगा कि जब तक ये सत्य बात है कि जितनी जिस चीज में हमारी आसक्ति रहेगी हम उसी चीज को अल्टीमेटली पाएंगे। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है और ये सत्य है, गणेश जी ने सर्टिफाई किया है, लिखा है, भगवान इसको कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावं त्यजतंते कलेवरम, कि जो जैसा भाव लेके मरता है उसी चीज को प्राप्त करता है। तो जो जिसमें जितनी आसक्ति होगी, जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ गया, वायरल फीवर या जो भी हो गया, डॉक्टर उसको आया और चेक कर रहा था, वो आधा होश में था आधा बेहोश था, तो डॉक्टर चेक करके और तुरंत उनके बच्चों को जब वो थर्मामीटर बता रहा था तो उन्होंने कुछ बोला 106, मतलब 106 डिग्री बुखार है या 104 डिग्री जो भी है, 104 डिग्री था। तो जैसे ही उसने 104 वर्ड सुना तुरंत बोला बेचो, सेल इट, मैंने 90 में खरीदा था अभी 106 हो गया, बेचो। उसका ध्यान वहीं पे था, जैसे मैंने कहा कि उसकी आसक्ति कहाँ थी, लकड़ी में। तो पूरे जीवन भर मैंने कपड़ों का बिजनेस किया, लकड़ी का करता तो कितना अच्छा आता था, या फिर दुकान पे कौन है। तो जहां पे जिस आसक्ति को हम लोग लगाकर बैठे हैं अल्टीमेटली वही आसक्ति हमको मृत्यु के पर्यंत उस समय समक्ष हमारे आएगी, और वो सबसे बड़ा हमारा टेस्ट होगा। कि जैसे एक स्टूडेंट पूरा जीवन भर पढ़ाई किया है और एग्जाम उसका टेस्टिंग पॉइंट है, एक योद्धा पूरा जीवन भर प्रिपेयर किया और वॉर उसका एक टेस्टिंग पॉइंट है एक सोल्जर का, तो उसी तरह हम जो जीवन भर जो हम लोग ये इच्छा और जो हमारी और जहाँ जहाँ आसक्ति हमने लगाई है वो हमारे को वहाँ पर काम आएगी। इसलिए धृतराष्ट्र से हमको क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई इस तरह से कम हम आसक्ति नहीं लगा। कुरुक्षेत्र में एक और पॉइंट प्रभुपाद जी लास्ट पर्पट में कहते हैं कि जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, आई डोंट नो आप में से कितने लोग किसान है, किसने खेती की है, तो खेती आए आप जब समझो अपनी फसल भी जब उगाते हैं तो दो चीज करनी पड़ती है। एक होता है कि एक अपनी जो वांछित फसल होती है, जैसे आप समझो अगर मूंग उगा रहे हैं तो मूंग आपकी वांछित फसल है, या जैसे गेहूं है तो गेहूं के साथ घुन जो घान होता है वो भी आता है ना, तो बोलते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो वो अवांछित फसल है, उसको उखाड़ना पड़ता है, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वीड्स, अगर आपने सुना तो वीड्स, तो वीड्स से प्रोटेक्ट करना पड़ता है अपने पौधों को, फेंस बनाना पड़ता है, ये सब करके रखना पड़ता है। तो बताते हैं कि ये धर्म क्षेत्र का जो ये युद्ध होने वाला है, ये धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हो रहा है, इसलिए उसको धर्म क्षेत्र बोलते हैं उस कुरुक्षेत्र को। और दूसरा क्योंकि वहां पर वांछित फसल जो है भगवान उसी को रखना चाहते हैं और अवांछित फसल को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, और अवांछित फसल कौन है, दुर्योधन एंड कंपनी, डी कंपनी जो है ये अवांछित फसल है जिसको भगवान उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, और वांछित फसल मतलब युधिष्ठिर जो है उसको एस्टैब्लिश करना चाहते हैं एज ए किंग, और धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने युद्ध उस भूमि में कराया, इसके लिए इसको धर्म क्षेत्र कहते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवा मामका पांडवश्चैव किमु कुर्वत संजय, कि मेरे पुत्रों के और पांडु के पुत्रों ने, तो उसने तुरंत बाइफर्केट कर दिया कि मेरे पुत्रों ने क्या किया है और पांडु के पुत्रों ने क्या किया है, हे संजय मुझे बता। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको समझना कि ये जो कुरुक्षेत्र है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमि है। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता के देन वी विल स्टॉप हियर, क्योंकि कुरुक्षेत्र का एक और अलग महत्व है वो मैं आपको बताता हूँ। वो है कि यहाँ पर भगवान की सर्वोच्च लीला या भगवान का सर्वोच्च रस का आदान प्रदान इस कुरुक्षेत्र में हुआ था। आपको किसी को पता है, आइडिया है व्हाट आई एम रिफरिंग टू? इस कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीला, या ऐसा कह सकते हैं कि भगवान की वन ऑफ द हाईएस्ट लीला, उस रस का आस्वादन हुआ था इस कुरुक्षेत्र की भूमि के अंदर। आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम टू थिंक, अगर आपको पता नहीं तो आई विल टेल यू। किसी को आइडिया? मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली क्या हुआ था कि कुरुक्षेत्र में बहुत टाइम तो पहले ना ऐसा ग्रहण वाला एक दिन था, तो द्वारका के सारे निवासी वहां पर गए थे, और वृंदावन से भी, क्योंकि दिल्ली के पास कुरुक्षेत्र है, वो वहां पर आए थे स्नान करने के लिए उस ब्रह्म कुंड में, तो ग्रहण के टाइम पे। तो जब ब्रजवासी, क्योंकि भगवान कृष्ण 11 साल की उम्र तक ही वृंदावन में थे, फिर वो चले गए वृंदावन छोड़ के मथुरा, मथुरा से फिर द्वारका और कभी वृंदावन में कभी वापस नहीं आए। तो वृंदावन के वासी जो थे वो कृष्ण के विरह में जल रहे थे, और इंडिट जब उद्धव गया वहां पर और किसी से पूछा कि मुझे नंद और बाबा, नंद बाबा और यशोदा से मिलना है, तो किसी ब्रजवासी ने कहा कि ये नदी देख रहे हो, तो बोले हाँ, बोले बस इस नदी के किनारे किनारे चलते जाओ तुम नंद यशोदा के घर पे पहुंच जाओगे, क्योंकि ये नदी जो है वो उनके घर से निकल रही है और ये पानी नहीं उनके अश्रु है, वो कंटिन्यूस रो रहे हैं। तो ये भगवान यानी ये सिचुएशन थी। तो वो वहां पर आए और जब ब्रजवासियों ने कृष्ण को देखा किस रूप में, द्वारकाधीश के रूप में, तो उन्होंने सोचा कि ये कौन है, ये तो हमारा कान्हा नहीं है, हम तो कृष्ण को कौन से रूप में देखते हैं, बरहा पीड़म नटवर वपुह कर्णियो कर्णिकारम, के जिसमें वो पीताम्बर धारण किए हुए है, वन फूल माला उन्होंने लगा के रखी है, मोर मुकुट उनके ऊपर शोभायमान हो रहा है, जो बांसुरी अपने हाथ में लेके बजाते हैं वो कृष्ण, आराध्य भगवान ब्रज से तने तो धाम वृंदावन, वो वृंदावन के कृष्ण जो है वो हमारे कृष्ण है, ये कौन है। तो जो राधा रानी ने देखा तो सोचा कि ये कृष्ण तो हमको नहीं चाहिए, हमको तो वो वृंदावन वाला हमारा जो श्याम सुंदर है वो कृष्ण चाहिए, और चलो इनको लेके वृंदावन, है पता नहीं कौन से ब्यूटी पार्लर में जाके कौन सा रूप बना के आए हैं। तो सोचे कि अभी कृष्ण तो ऑब्वियसली राजा थे वहां पे, उनकी तो 16,000 रानियां भी थी उस समय, तो बोले कैसे जाए। तो उन्होंने मन के अंदर अपना एक एक बहुत अच्छा एक रथ तैयार किया और उस मन के अंदर कृष्ण को उस रथ में बुला के बिठाया और सोचा कि इसको वृंदावन में हम लेके जाते हैं। तो कुरुक्षेत्र जो है वहां से भगवान को वृंदावन जाने की ये जो लीला है, हाँ, जो गोपी अपने मनोरथ पे उनको बिठा के, और वो उनका बस चलता तो खींच के लेके जाते कृष्ण के रथ को, तो कहे कि इस कृष्ण के रथ को खींचो और वृंदावन में लेके चलो। तो ये कुरुक्षेत्र से वृंदावन जाने की जो लीला है वह लीला जो है जिसको हम जगन्नाथ रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जो है वो अपने भाई बलदेव और सुभद्रा के साथ में द्वारका से आए हैं कुरुक्षेत्र में। तो जगन्नाथपुरी के अंदर जो जगन्नाथ मंदिर है जिसको नीलाचल धाम बोलते हैं, वो नीलाचल वहां से सुंदराचल, मतलब जो गुंडीचा मंदिर है जो ग्रैंड रोड जो है वहां पे उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में, तो ये जो खींचने की जो ये रथ यात्रा के पीछे ये भाव है कि राधा रानी कृष्ण को द्वारका से वृंदावन लेके जा रही है। तो ऐसा भाव वहां पे प्रकट करते हैं भक्त लोग कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपने द्वारका से निकल के वृंदावन जा रहे हैं। और जगन्नाथ का ये जो रूप ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, तो प्लीज रिमाइंड मी। तो वहां से हम हमारी क्लास की शुरुआत करेंगे, जस्ट टेल मी कि जगन्नाथ के बारे में थोड़ा सा बताना है। तो ये भगवान को जो, और वहां पर क्या है कि राधा रानी को सबसे ज्यादा जरूरत थी सेवा की, इसलिए प्रभुपाद उनके गुरु और उनके और गुरु भक्ति विनोद ठाकुर है, उन्होंने कहा कि वी आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन एक्चुअली वृंदावन, बट वी आर इंटरेस्टेड इन कुरुक्षेत्र। वाई? बिकॉज वृंदावन इज फॉर शैलो पीपल, कुरुक्षेत्र इज फॉर द डिवोटीज। वाई? बिकॉज राधा रानी वॉन्ट्स द मोस्ट सेवा इन कुरुक्षेत्र, वो चाहते हैं कि मदद करे लोग उनके रथ को खींचने में कृष्ण के और वृंदावन में लेके जाए। तो इसके लिए जो इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आते हैं वो भक्त लोग क्या करते हैं कि दे आर नॉट, अगर चाहे तो जैसे वृंदावन में बैठ के भी अपना भजन कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी जैसे मैंने आपको पहली क्लास में कहा 70 बरस की उम्र में वृंदावन से बाहर निकले कार्गो शिप पे, 32 से लेके 36 दिन की जर्नी करके दो हार्ट अटैक आए उनको, एक पैसा 40 रुपए उनके जेब में थे केवल, वो करके कहां गए, अमेरिका गए इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए, और अमेरिका में प्रचार करके और पूरी दुनिया के अंदर विश्व भर में उन्होंने प्रचार किया। तो उनकी परंपरा में जो भक्त लोग है वो भी अपने घर पे नहीं बैठते, अभी दोपहर को बहुत सारे भक्त लोग सो सकते हैं लेकिन अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके, और सब आ रहे हैं कि नहीं ये जरूरत है, राधा रानी की ये हेल्प कर रहे हैं, प्रभुपाद की हेल्प कर रहे हैं, और सब लोगों को इस भक्ति के बारे में और गीता के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी की असीम अनुकंपा है और कृपा है, और इसके लिए हम श्रीला प्रभुपाद जी की कृतज्ञ है कि उनके प्रयासों से हमको ये सीखने के लिए मिला, और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो भी हम कर सके और भगवान हमको निमित्त मात्र बना के जो कर ले। तो इस तरह से मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग भी सब भगवद गीता की कॉपी अपने पास रखिए, उसको पढ़िए, और प्रचार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि ते जन्म होइले मनुष्य जार, जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार, कि जिसका भारत भूमि के अंदर जन्म हुआ है उसका एक कर्तव्य है कि पहले अपना जीवन को सार्थक करो गीता पढ़ के, और फिर दूसरों को बताओ। बताना क्या है, बहुत सिंपल है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण का नाम ही युग धर्म है, चार नियम का पालन करना है, कृष्ण प्रसाद खाना है और बस, इतना अगर हमने किसी को कह दिया तो हो गया हमारा काम, और वो भगवान अपने डायरी में नोट कर लेंगे कि चलो इसने कुछ किया है। विद दिस वर्ड वी विल ट्राई टू
सेकंड श्लोक का उच्चारण सीख सकते हैं थोड़ा आज?
हाँ ठीक है, हम लोग उच्चारण करते हैं और नेक्स्ट टाइम फिर सेकंड श्लोक पे चर्चा करेंगे जगन्नाथ जी का पास टाइम लेके।
तो
या विल बी प्रैक्टिस, और अभी बहुत अच्छी तरह से सानवी ने एक श्लोक आपके आने के पहले उच्चारण कर दिया था, और आज इसका बर्थडे है तो आज हम उसको एक स्पेसिफिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट गिफ्ट देने वाले हैं। सानवी यू विल गेट ए गिफ्ट टुडे। सो पहले हम लोग ये वर्स रिसाइट करते हैं, देन यू विल गेट योर गिफ्ट। संजय उवाच,
संजय उवाच,
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्,
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्,
व्यूढं दुर्योधनस्तदा,
व्यूढं दुर्योधनस्तदा
आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत। संजय उवाच
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्
व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य
राजा वचनम् अब्रवीत।
देखो मैं इसका पहले वर्ड बाय वर्ड भी बोलता हूँ तो आपको समझ में आएगा। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवा अनीकम व्यूढं दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो ऐसा है, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य
राजा वचनम् अब्रवीत।
संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तभी संजय बोलना शुरू कर रहे हैं, क्या हुआ क्या होगा वो हम भगवद गीता के नेक्स्ट हमारा जो भी सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा,
हंसराज,
श्रीमद भगवद गीता की
जय,
जय श्रील प्रभुपाद की
जय।
तो आज बहुत अच्छा दिन है, सानवी का आज बर्थडे है। सो वी ऑलरेडी
आज सेलिब्रेट किया
कब था?
24 को
था। तो आज सेलिब्रेट किया एंड वी विश हर वंस अगेन ए वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस ईयर एंड मेनी मोर टू कम। सो टुडे ऑन बिहाफ ऑफ अवर गीता क्लास वी वुड लाइक टू गिफ्ट सानवी वन वेरी वंडरफुल गिफ्ट। सो प्लीज सानवी कम फॉरवर्ड एंड एक्सेप्ट दिस पिक्चर।
वेरी नाइस,
कम यार, आगे आ जाओ, खड़े होके नाले के
पहले
हरे
कृष्णा बोलो
सबसे।
हरे कृष्णा।
सो दिस इज भगवद गीता विच इज वेरी इम्पोर्टेंट गिफ्ट, यू नो। तो किसी को अभी ऐसा नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी घूम घूम के गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।
हाँ बिल्कुल जी।
सो वी प्रे टू लॉर्ड कृष्णा दैट लॉर्ड कृष्णा ब्लेसेस हर एंड शी इम्बाइब्स भगवद गीता इन हर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा।
ये तुम्हारी कॉपी है, पर्सनल कॉपी है।